अच्छा जी, बदलते क्या जा रहे हैं? पहले इंस्टेंस में उन्होंने बताया जी, एक क्या हुआ है कि एक इन्होंने खुद से एक इंटरसेक्शन पे कोलिजन किया है, कोलिजन करके एक इन्होंने गाड़ी जो थी वो की हुई थी, टारगेट की हुई थी, कोलिजन करके ये बाहर निकले हैं, बाहर निकल के वो जो गाड़ी थी उस गाड़ी के ड्राइवर को फोर्सिबली बाहर निकाल के फेंका है और फिर ये गाड़ी उसकी लेके भाग गई। अच्छा, दूसरे इंस्टेंस में क्या हुआ कि एक जो है ड्राइववे में गए हैं, ड्राइववे में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, वो आदमी जो है वो गैराज के अंदर अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था, तो ये जब गए तो उस आदमी ने अपनी तरफ से गैराज बंद कर दिया कि ये भाग ना सके। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने गाड़ी के अंदर बैठ के क्रैश करते हुए उस गाड़ी लग्जरी कार को लेके भाग गए और आदमी वो जो है बेचारा वो देखता रह गया। अच्छा, थर्ड इंस्टेंस में क्या हुआ कि एक गैस डालने के लिए एक आदमी जो है वो उतरा है, तो इन्होंने क्या किया जी, जब वो गैस डाल रहा था तो ये जो है भाग गए लेके उसकी गाड़ी। फोर्थ इंस्टेंस में ये हुआ है कि शॉपिंग मॉल के अंदर ये इसको फॉलो कर रहे थे ड्राइवर को, और इसको फॉलो करते हुए इन्होंने जो है उसको रोका है, और उसके बाद जो है इससे कुछ पूछने के लिए जैसे या क्या, जैसे पार्किंग लॉट में आप गाड़ी खड़ी करके कोई पूछना चाह रहे हैं चीज और लेके जो है आदमी को मार, तो वो कह रहे हैं कि ये आप यॉर्क रीजनल पुलिस कह रही है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसलिए कि अब ये इनोवेटिव तरीके जो है ना कर रहे हैं, अब ये नहीं कर रहे कि कोई छुरी दिखा रहे हैं,
एंड दे आर वेरी वायलेंट। तो पुलिस ने ये भी कहा है, वार्न किया है लोगों को कि अगर आपके साथ ऐसा किसी चीज का सामना होता है तो आप बेहतर ये है कि व्हाटएवर दे वांट गिव इट टू देम,
यस,
एंड देन कॉल 911, मगर उस वक्त आप उनको रेजिस्ट ना करें क्योंकि दे आर वेरी डेंजरस, आर्म्ड एंड डेंजरस पीपल।
तो वो कह रहे हैं कि जी हम बस यही ड्राइवर्स को बताना चाहते हैं कि अब ये अपनी अप्रोच जो है थेफ्ट्स की ये चेंज करते जा रहे हैं, हर जगह पे डिफरेंट तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बहरहाल नाप रहे हैं। अच्छा, ये हम आपको बता रहे हैं जी पिछले लास्ट वीक से कि स्वीडन और फिनलैंड जो हैं वो अब ज्वाइन कर सकते हैं नेटो को, तो आज उन्होंने उनको कह दिया, हालांकि ये प्रोसेस जो है इसमें सारा एक साल लगेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा जी कि हम 30 मेंबर जो ये जो ब्लॉक है इसको हम नेटो के इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। और अब इसमें देखे ना, फिनलैंड का रशिया के साथ जो बॉर्डर है 1314 किलोमीटर है, 1949 में जब ये इन्होंने नेटो बनाई थी तो उस वक्त ये जो कुछ कंट्रीज थे स्वीडन फिनलैंड पोलैंड, इन्होंने कहा था कि हमको इसका हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्या हुआ था कि जब सोवियत यूनियन टूटा था ना, तो बहुत सारी सोवियत यूनियन की जो स्टेट्स थी वो जाके जुड़ गई थी नेटो के साथ, ये कुछ स्टेट्स फिर भी न्यूट्रल रह गई थी, तो इन्होंने कहा क्या, खैर ये तो रशिया का हिस्सा भी नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं अभी भी हम
जॉर्जिया वगैरह
तो इन्होंने कहा कि नहीं हम जो है, लेकिन अब ये इन्होंने डाला है। अच्छा, अब जबकि इन्होंने अर्जी डाली है कि जी हम ये इसमें कर सकते हैं, तो इनके जो है पुटिन ने इसको बड़ा थ्रेट समझा, उन्होंने कहा जी कि ये जो आप नेटो की फोर्सेस अब हमारे दरवाजे पे आ गई हैं, हमने पहले भी यूक्रेन के ऊपर जब आप कहते हो इन्वेजन किया उस वक्त भी हमने आपको अपनी डिमांड्स दी थी कि हमारे दरवाजे पे हमारे फुट स्टेप पे आप ये नेटो का थ्रेट लेकर नहीं आए, क्योंकि जाहिर है वो नेटो आ जाएगा पोलैंड में फिनलैंड में स्वीडन में, तो वो नेटो की फोर्सेज भी आके इधर बैठेंगी, तो वो कह रहा है कि जी ये आपने जो किया है दिस, और उसने आज बहुत क्लियर वर्ड्स में पुतिन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये मिस्टेक होएगा आपका, ये जो फिनलैंड और स्वीडन ने किया ये मिस्टेक है।
मगर एक और तरीका, एक और जो सोच है ना वो ये कि हो सकता है कि जब इनसे बातचीत शुरू हो, इवेंचुअली तो बातचीत होनी है, इवेंचुअली तो सीज फायर होना है वहां का, तो जब सीज फायर होगा तो दे हैव बार्गेनिंग टूल्स कि आप देखें ये बात माने, हम आपको ये देते हैं कि हम इनको नेटो में नहीं लेके आएंगे आप, क्योंकि इट्स गोइंग टू टेक अबाउट अ ईयर है ना, तो हम आपको इन कंट्रीज को नेटो में नहीं लेके आते, आप इस बात को माने, हम इस बात को मानेंगे, तो वो
चलेंगे। अच्छा, इस मौके पे सर्जे बिजुकिन है, एक एक्टिविस्ट हैं और पब्लिसिस्ट हैं एक, तो उन्होंने आज बड़ा जी इसको इस चीज को और ज्यादा हाईलाइट किया, उन्होंने कहा कि ये जो आज स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन कर रहे हैं नेटो को, तो ये दो लेवल्स पे पुतिन साहब की डिफीट है, एक डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, तो भाई ये इस तरह के बयान आएंगे तो चीजें जो हैं फिर और खराब होंगी। बहरहाल जी उन्होंने ये बयान दिया। अच्छा, अब जबकि ये हुआ है तो इसमें अब जो रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जे रेपकॉव, उन्होंने भी जो है बयान आज दिया है और उन्होंने कहा है कि आप अगर ये समझ रहे हैं ये आपका इल्यूजन है कि आप जो है हमें प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, एक टीवी का इंटरव्यू ये दे रहे थे सर्जे रेपकॉव, तो रेपकॉव, तो उन्होंने कहा जी कि हम इस अलायंस को बिल्कुल एक मिस्टेक समझते हैं और ये आपका इल्यूजन है कि ये जो चीजें जिस तरह से एस्केलेशन की तरफ जा रही हैं और जिस तरह से आप लोग एक्सपैंड करते जा रहे हैं, तो हम इसके लिए रिएक्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे रिएक्ट, इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। ये जो अलायंस आज हुई है इससे जी टर्की के अंदर अब दो जो हैं वो खतरे पैदा हो गए हैं। अच्छा, एक तो टर्की के अंदर ये हुआ है कि इनका जो न्यूक्लियर प्लांट है, एक्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये फुली फंडेड था बाय मॉस्को। अब जबकि इसके ऊपर सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगती जा रही हैं, तो इस जो प्लांट के ऊपर 20 बिलियन US डॉलर्स लग चुके हैं माजिद भाई, ठीक है जी। टर्की का ये ख्याल है कि हमको ये इमीडिएटली ये खत्म करना है, अपना ये जो न्यूक्लियर प्लांट है इसको बनाना है, क्योंकि हमारी एनर्जी की नीड्स हैं। तो इन एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए ये हमको 1200 मेगावाट के जो ये रिएक्टर्स हैं इनको काम करना जल्दी से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रोसाटॉम जो है रशिया की कंपनी, अभी तक तो इसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगे हैं, लेकिन टर्की का ये डर है कि जिस तरह से ये हर चीज पर रशिया की सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं, इस पे भी अगर लगा दी तो हमारा काम रुक जाएगा बिल्कुल, उसका न्यूक्लियर प्लांट का, जिसके के ऊपर मैसिव इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये अब उनका बड़ा डर बढ़ गया। इसके अलावा ये जो फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने, ये हमने सुनाई थी फ्राइडे को खबर कि टर्की ने इनको कहा है नेटो को ऑलरेडी कि ये जो दो कंट्रीज हैं, ऑब्जेक्शन दिया है कि ये जो दो कंट्रीज हैं इनके अंदर जो है टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी हिट लिस्ट पे हैं, जो कर्डिश जो उनको मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं, ये इन कंट्रीज में बैठी हुई हैं। आज जब इन्होंने कहा कि जी हम नेटो का हिस्सा बनेंगे, तो जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने और जो हैं नेटो के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने आपस में मुलाकातें की हैं और यूएसए ने भी कहा है कि हमें लगता है कि टर्की जो है इस चीज को जो है वो रिटार्ड करने की कोशिश नहीं करेगा।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
जी
अच्छा, तो टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेवलुत कोसोवलू और जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेन स्टॉल्टनबर्ग, इनके बीच में मुलाकातें हुई हैं और इन्होंने भी कहा स्टॉल्टनबर्ग साहब ने कि हम इनके जो फियर्स हैं नेटो के, हम सॉरी टर्की के, हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यूएसए ने भी कहा है कि ये जो एक मीटिंग हमारी बर्लिन के अंदर हो रही है तो उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे और इनके साथ जो है ये जो इनकी रिजर्वेशंस हैं टर्की की उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। टर्की ऑन इट्स पार्ट उसने कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है नेटो को ज्वाइन करते हैं, हमारा सिर्फ ये एतराज है कि ये हमारे मुल्क की जो हिट लिस्ट पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फिर निकालें अपने मुल्क से और उनके खिलाफ या एटलीस्ट क्रैक डाउन शुरू करें।
सही।
तो अब ये फिर से बातें शुरू हो गई हैं इनके बीच में, तो अब देखेंगे क्या होगा। यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डिमिट्रो कोलेबा, उन्होंने आज फिर से G7 कंट्रीज को कहा है, अपील की है कि भई हमको जो है आप आर्म्स दें, मिलिट्री एड हमको चाहिए। ये इन्वाइटेड थे फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है जर्मनी के अंदर, वहां पर ये सारे इकट्ठे हुए थे जहां पर इन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आपने रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स पे तो लगाया है वो सैंक्शन लगाए हैं, लेकिन जो इसके एसेट्स हैं आपके मुल्क के अंदर उनके ऊपर भी जो है आप उनको फ्रीज कर दें, रशिया के एसेट्स को फ्रीज कर दें और इसके अलावा जो है आप हमारे लिए पैकेज अनाउंस करें। तो यूरोपियन यूनियन जो है उसने 520 मिलियन US डॉलर्स का इनके लिए डिफेंस बजट जो है वो अनाउंस किया है। इसके अलावा तो आप देख ही रहे हैं कि सेपरेट गवर्नमेंट्स, जैसे कि अमेरिका का तो बहुत ही बड़ा है, 40 बिलियन अब वो मांग रहे हैं कांग्रेस से, एंड देन कैनेडा ऑल्सो इज पिचिंग इन, एंड देन यूके एंड ऑल द अदर कंट्रीज। तो ये काफी इनको एड वेट तो जा रही है, तो अब देखेंगे कि ये कहां पे जो है वो लगती है। मजीद भाई, कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी आई थी और उसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी, तो उसके बारे में कहा था कि नहीं ये तो सारी चीजें जो है हशहश हैं, अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया, तो आपने ये स्टोरी कैसे छाप दिया? तो काफी खींचा था न्यूयॉर्क टाइम्स को स्टोरी के ऊपर। आज उस स्टोरी के ऊपर जो फर्दर जो एक स्टोरी और लिखी गई है वो रॉयटर्स ने लिखी है। अच्छा, ये स्टोरी क्या जिसके के ऊपर आज इतना हंगामा अमेरिका में जो था वो कुछ दिन पहले मचा था, आज तो खैर नहीं, कुछ दिन पहले मचा था, वो स्टोरी ये है कि बाइडन साहब जो हैं फिर से कह रहे हैं कांग्रेस को कि आप अपने फोर्सेस जो हैं फिर से सोमालिया के अंदर डिप्लॉय करें, क्योंकि अल शबाब जो है उसका वहां पे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। ये कॉन्स्टेंटली सूडान के अंदर जो है सोमालिया में, सॉरी सोमालिया में लगाएं, सोमालिया में कॉन्स्टेंटली ये लोग जो हैं जो हैं सिटीजन्स सिविलियंस उनके ऊपर ये अटैक्स कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं, और ये जो हैं सारे अगेंस्ट हैं अमेरिकन इंटरेस्ट। ये हुआ क्या था कि ये एक रिक्वेस्ट डाली थी यूएस सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी जो है लॉयड ऑस्टिन ने, और उस वक्त ये स्टोरी सामने आ गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमें पता चला है अंदर के सोर्सेज से कि जो लॉयड ऑस्टिन साहब हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली है बाइडन साहब को, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तुम लोग कैसे स्टोरी छाप देते हो एंड ऑल दैट। तो आज रॉयटर्स की जो स्टोरी आई है उसने आज इसको कन्फर्म कर दिया कि अब ये इनके अमेरिकन फोर्सेज जो हैं ये अब सोमालिया जाएंगे। और ये पॉलिसी जो थी, अगर आपको याद होए तो ये जो ट्रंप साहब थे उन्होंने अपनी सारी की सारी अमेरिकन फोर्सेस सोमालिया से वापस बुला ली थी,
वो तो बारी बारी हर जगह
कंट्री से अपने वापस बुला रहे थे। हाँ, तो ये अब इन्होंने ट्रंप साहब का जो डिसीजन था उसको फिर से रिवर्स किया है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है कुछ दिन पहले काफी हीट रही और अब नहीं। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से काफी जो है वो लोग मारे जा रहे हैं, पहले टेक्सस में शूटिंग हुई है और अभी जो इस वीकेंड के ऊपर एक लड़के ने, 18 ईयर्स का लड़का यंग था और उसने एक सुपरमार्केट के ऊपर जाके की है शूटिंग की है और 10 लोगों को मार दिया है, कुछ को बाहर मारा, कुछ को अंदर सुपरमार्केट में जाके मारा, अनप्रोवोक्ड बिल्कुल ये शूटिंग थी जिसका कुछ नहीं, तो जाहिर है कि इसको एज अ हेट क्राइम लिया जा रहा है। ये लड़का जो है इसने टॉप्स फ्रेंडली जो मार्केट थी उसके अंदर, इस लड़के का नाम है पेटन गेंड्रॉन, 18 ईयर्स है, और इसके ऊपर आज यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस उन्होंने भी बहुत ज्यादा इसका बुरा मनाया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये वायलेंट रेसिस्ट एक्सट्रीमिज्म जो है अमरीका के अंदर बढ़ती चली जा रही है जिसको के रोकने की जरूरत है। अच्छा, ये जो लड़का है इसकी बड़ी अजीब स्टोरी है। अच्छा देखे ना, ये अब निकला है बंदूक लेके, आपने अगर देखा होगा वीकेंड के ऊपर इसने मिलिट्री गियर पहना हुआ है और काफी ऊंचा लंबा है और ये गया है और उसने गोलियां जो है ऐसे मारनी शुरू कर दी हैं, और इससे पहले कि ये अपने आप को गोली मार लेता पुलिस वहां पे आ गई थी, पुलिस ने जो है फिर इसको जरा काम डाउन किया इससे भी और इसको अरेस्ट करके इसको लेकर गए हैं। इसके बारे में आज बातें और भी इस लड़के के बारे में सामने आई हैं कि ये सस्कवाना वैली हाई स्कूल के अंदर ये पढ़ता था और अपने ग्रेजुएशन के वक्त में भी ये बड़ा ये ब्लैक्स जो थे, ये ब्लैक नेबरहुड था जहां पे इसने किया है, तो ये ब्लैक्स को बड़ा नफरत उनसे खाता था और उसने उस वक्त भी कहा था कि मैं मारूंगा, मैं कुछ किलिंग्स करूंगा। अच्छा, उस वक्त इतने वो लोग डर गए थे कि उन्होंने पैरा ट्रूपर्स मंगवाए थे अपने वहां पे, कुछ ट्रूपर्स मंगवाए थे अब स्कूल के अंदर, तो ये इस लड़के को पकड़ के ले गए थे और इसको फिर साइकियाट्रिक इसका जो है टेस्ट वेस्ट किया, कुछ किया, लेकिन उसके बाद फिर इसको रिलीज कर दिया।
दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन राइजिंग कि भाई आपके पास था इसकी इन्फॉर्मेशन, तो आपने पहनाया ऑन हिम
जी, तो आपने ऐसे इसको मतलब खुला कैसे छोड़ा हुआ है, राइट? उस वक्त भी छोड़ दिया और फिर आपकी ये जो है वो कुछ वॉच लिस्ट में भी नहीं था, तो ये आई मीन ही हैड दैट यू नो हिस्ट्री ऑफ टॉकिंग नॉनसेंस लाइक दिस, और फिर अब जो है ये इतना बड़ा वाकया किया, तो आज इसको काफी कंडेम किया है यूनाइटेड नेशन।
और ये खत्म नहीं था, इसके पास जो मैनिफेस्टो निकला है इसका 180 पेजेस का, चैटर्जी उसके अंदर उसने लिखा है कि मैं तो इस टॉप्स की जो सुपरमार्केट है उससे मैं मार मूर के जाऊंगा और दूसरे जगहों
पे मारूंगा। यस यस,
है ना, तो ये ही हैड द एमिनेशन विद हिम
और उसकी गाड़ी में भी, और वो और ही हैड अ फुल प्लान कि मैंने किधर किधर जाना है और क्या क्या कुछ करना,
क्या कुछ करना।
बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है वो कह रहे हैं कि जी पुलिस कह रही है कि हमें कोई इसमें शक नहीं है कि ये हेट रिलेटेड क्राइम है, हेट मोटिवेटेड क्राइम है, तो
दिस इज टेररिज्म, दिस इज टेररिज्म।
वही तो कहा है वो एंटोनियो गुटेरेस ने, यही कहा है उन्होंने, कहा कि ये दिस इज एक्सट्रीमिस्ट रेसिस्ट टेररिज्म, तो ऐसे है, वायलेंट टेररिज्म है ये। श्रीलंका में जी नए, आपको पता है बेचारे प्राइम मिनिस्टर तो आ गए हैं रॉनिल विक्रमसिंघे, लेकिन जाहिर है कि उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि इस वक्त कंट्री को 75 मिलियन यूएस डॉलर्स चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, जो हमारी इसेंशियल जो इंपोर्ट्स हैं वो करने के लिए, जैसे कि मेडिसन है, ऑयल है। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास टोटल एक दिन का ऑयल का स्टॉक रह गया है, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है ऑयल लेके लोग आ नहीं रहे हैं, शिपमेंट सारी आई हुई हैं, लेकिन उन शिपमेंट्स को पैसे देने के लिए हमारे पास नहीं है, तो हम उनको पैसे जब तक नहीं देंगे तो हमारे मुल्क में अब जो है वो नहीं आ सकेगा, ऑयल भी नहीं आ सकेगा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो ईयर्स ऑफ करप्शन यहां पर चलती रही है, असल में ये तो जो है ना, अगर आप इफ यू फॉलो दीज थिंग्स तो आपको समझ आएगा कि ये दिस एक्चुअली इज, अरफा बाजी तो बहुत एक्सटेंसिवली इसके ऊपर बात करती हैं, दिस इज कॉल्ड द फिफ्थ यू नो जनरेशन वॉरफेयर। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में क्या होता है कि पहले आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया, वीक किया जाता है, फिर आपके ऊपर जो है वो उधर सिविल वॉर शुरू की जाती है, कोई ड्रोन अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, फिर जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट्स जो हैं उनको हटाया जाता है, स्टेबिलिटी जो है उसको खत्म की जाता है, यानी इनस्टेबल किया जाता है कंट्री को, और फिर ये हौले हौले, तो दिस इज कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर. जब किसी कंट्री को आपने खत्म करना है तो ये तो घंटी बज रही है कुछ हमारे पाकिस्तानियों की. क्या हो रहा है आपके साथ, डू यू अंडरस्टैंड? बहरहाल एनीवेज, तो यही एग्जैक्टली हुआ है श्रीलंका के साथ. हालांकि ये जो राजापक्षे ब्रदर्स थे जिनके के बारे में अब लोग इतने हो गए हैं, वैसे तो आई वॉज सो सरप्राइज व्हेन आई वॉज रीडिंग देयर हिस्ट्री यस्टरडे. देर आर 45 मेंबर्स. माजिद भाई, हमने तो यहां पे बताया था ना कि तीन इनकी फैमिली के जो मिनिस्टर्स थे राजापक्षे फैमिली के, उन्होंने रिजाइन कर दिया. एंड देन द ब्रदर एंड द प्राइम मिनिस्टर ब्रदर एंड द प्रेसिडेंट ब्रदर, वो चले गए पांच लोग. 45 पीपल ऑफ देयर फैमिली वर इन गवर्नमेंट.
ओके,
45 पीपल.
सारे बड़े बड़े शोबे पकड़ लिए,
पकड़ लिए हुए थे. ठीक है जी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे और वो सारे थे. तो ये जिस वक्त जो है लेवल ऑफ करप्शन आना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त फिर आपकी कंट्री के अंदर, और वो कहते हैं बेशुमार एड आई थी, स्पेशली जिस वक्त यहां पे जलजले वगैरह और वो तूफान और सुनामी और ये चीजें आती थी ना, सुनामी खासतौर पे जब आते थे, बेशुमार एड आती थी. मगर वो एड जो थी इनको बेल आउट करने में काफी हो सकती थी, लेकिन वो सारी गई इनके प्राइवेट पॉकेट्स के अंदर. तो उसकी वजह से जो है, तो ये जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इन्होंने भी श्रीलंका के, उन्होंने भी यही कहा है कि ये करप्शन जो मैसिव यहां पे चलती रही है, उसकी वजह से जो है ये सारा कुछ होता रहा. अच्छा जी, आज यूरोपियन यूनियन जो है, स्पेशली जो G7 के कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा आज एतराज किया है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया ने आज अनाउंस किया है कि वीट की एक्सपोर्ट पे हम कंप्लीट बैन लगा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया के हालात आगे चलते जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारे पास फूड होएगा कि नहीं होएगा. एज अ रिजल्ट हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. G7 कह रहा है कि ऑलरेडी रशिया और जो है यूक्रेन की वॉर चल रही है, और वैसे तो इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट या लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो कमी रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में आ गई है, तो तुम भी अगर करोगे तो जो एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे जो पुअर कंट्रीज हैं, वो उनमें ज्यादा जो है ये फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी. इंडिया ने कहा है, और इंडिया को उन्होंने कहा है कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ G20, तो यू शुड शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडिया ने कहा जी कि जिन लोगों ने हमारे साथ लेटर ऑफ क्रेडिट साइन किए हुए हैं, या जो हमें कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट डालेगा कि जिसकी हालत बहुत ही पतली हो जाएगी, उसको शायद हम देंगे, बट हम इस वक्त कंप्लीट बैन लगा रहे हैं. तो बहरहाल इंटरनेशनली काफी इसके ऊपर जो है वो आया है. हालांकि जो हिंदुस्तान के अंदर जो है कीमतें काफी बढ़ गई हैं वीट की, तो उसके ऊपर
भरे भरी तो वहां ही बड़ी है,
बड़ी
भर में बड़ी
जी. तो वहां पे पहले जो थी वो ये जो वीट की जो सपोर्ट प्राइस जो दी जा रही थी उसके अंडर 20,150 जो था वो, उसके जो थे वो वीट के वो आते थे जो है वो थैले आते थे बड़े वाले, जाहिर है नॉट दैट द स्मॉल वन. अब जो प्राइस है उसकी 25,000 रुपीज, इंडियन रुपीज है ये, उसके ऊपर ये टच कर रही है. तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा अच्छा नहीं है कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट करें तो ये प्राइस नीचे आ जाएगी जरा. तो वो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हमारे अपने मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो हम इसलिए ये नहीं करना चाह रहे हैं. आज जनाब इंडिया ने, आपको हमने बताया था कि OIC ने जो ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है उसके ऊपर जो इंडिया की पॉलिसी है उसको बड़ा हिट किया था. आज इंडिया ने वापस जो है OIC के ऊपर बड़ा एतराज किया है, और जो इनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिधम बागची, उन्होंने कहा जी कि हमारे इंटरनल मामले में जो OIC के ये कॉमेंट्स हैं ये अनवॉरेंटेड हैं. हमने बहुत दफा OIC को कहा है कि एक मुल्क के कहने पे, यानी कि जाहिर है इन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन जाहिर है कि रेफरेंस तो पाकिस्तान का ही था. उन्होंने कहा जी एक मुल्क के कहने पे आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये आप बिल्कुल ना करें. जो ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर जो है, उन्होंने तो खैर ऑक्यूपाइड का वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने कहा जम्मू और कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है और ये हमेशा से रहेगा, तो इसलिए आपको इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. तो हम कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं आपके जो assertions और आपके comments हैं जम्मू और कश्मीर पे, और हमारे इंटरनल मामले पे बिल्कुल बात ना करें आप. आज जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं जी अरविंद केजरीवाल, वो काफी भड़के हुए थे. उसकी वजह यह है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं उन्होंने दिल्ली के अंदर, जो कि अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर है, दिल्ली की गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, उन्होंने बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए हैं बहुत सारे इलाकों में, जिसके के बारे में वो कह रहे हैं कि जी ये सारी जो है एनक्रोचमेंट्स हैं और इलीगल आबादियां हैं. इसके अंदर ज्यादातर जो इलाके हैं वो हैं जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, मदनपुर और कदर. तो इस तरह के कुछ इलाके हैं। मुसलमानों का कहना है कि ये सारे मुसलमानों के इलाके हैं एंड दिस ड्राइव इज स्पेसिफिकली अगेंस्ट मुस्लिम्स। हमारे घर भी तोड़े जा रहे हैं और हमारी दुकानें भी तोड़ी जा रही हैं। और वो इस पे आज जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तुम क्या क्या कुछ तोड़ोगे यहां पे दिल्ली के अंदर भाई, क्योंकि दिल्ली की जो प्लानिंग है वो कोई प्लान्ड नहीं थी। वो तो जिधर जिसको जो जमीन पुराने दिनों में मिली उसने वहां पे अपनी कोई दुकान खोल ली, अपना मकान खोल लिया। तो उन्होंने आज कहा कि 80% ऑफ दिल्ली जो है वो इसी तरह अलेजली इलीगल जमीनों के ऊपर आबादियों में बसा हुआ है। तो तुम इसका मतलब है कि 80% दिल्ली को बुलडोज करोगे, कैसे करोगे भैया इस तरह। और इसके अलावा इन्होंने आज और भी आंकड़े दिए हैं। उन्होंने कहा जी 50 लाख लोग जो हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, 10 लाख जो हैं झुगियां हैं। तो 10 लाख झुग्गी का मतलब 10 लाख आदमी नहीं है ना, 10 लाख झुग्गी का मतलब है मे बी 30 या 40 लाख बंदा।
इसी तरह जगह 3-4 लाख लगा लें आप,
लगा लें। हाँ जी, तो वो कहते हैं कि ये सारे बंदों के आप झुग्गियां भी, उनके घर भी, दुकानें भी सब खत्म कर दोगे। तो ये कहा, पर उन्होंने काफी इस पे शोर मचाया और उन्होंने कहा जी कि ये दादागिरी और ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और उन्होंने आज मीटिंग की है अपने एमएनएस के साथ और उन्होंने उनको कहा है कि अगर इस कॉज के लिए हमको जेल भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे।
सही।
तो काफी उन्होंने जो है बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एतराज किए हैं। दिल्ली के से थोड़ा दूर आगे कुछ यात्रा चल रही थी यहां पे, मतलब थोड़ी और आगे, जैसे कि यमुना नौत्री का इलाका है और गंगोत्री का, केदारनाथ का, बद्रीनाथ के, ये जो इलाके हैं यहां पे चल रहे हैं, कुछ यात्रा चल रही है। अच्छा, अब ये क्या हुआ है यहां पे, ये उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ है कि वहां पे ये जो 4 श्राइन्स हैं इनके ऊपर 39 पिलग्रिम्स ने की डेथ हो गई है। अच्छा, अब जब ये डेथ हुई तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो हैं इनकी डेथ्स हाई ब्लड प्रेशर से, हार्ट अटैक से, और ये जो माउंटेन सिकनेस हो जाती है उसकी वजह से ये जो है ये हो रही है। कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड में, करज महारा जो हैं, उन्होंने कहा है जी कि ये बीमारियों की वजह से लोग नहीं मरे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज नहीं दी हैं इनको, इन यात्रियों को, उसकी वजह से ये मरे हैं। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये तो ऑपोजिशन का हमारे ऊपर एलिगेशन है और इन लोगों को हार्ट अटैक आए थे तो इसलिए ये मरे हैं, ऐसे हैं। कराची के अंदर जी अफसोस का वाकया ये हुआ है कि वहां पे जो बोल्टन मार्केट है कराची के अंदर, खरदार के अंदर, वहां पे आज फिर से एक एक्सप्लोजन हुआ है और ये इम्प्रोवाइज जो थी एक्सप्लोजिव डिवाइस थी जो कि एक मोटरसाइकिल के अंदर रखी गई थी, तो वहां पे धमाका हुआ है जिसमें कि एक औरत की डेथ हो गई है और बाकी 12 लोग जो हैं, जिसमें कि 3 पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, वो यहां पे जख्मी हो गए हैं। जाहिर है कि ये जो अटैक था ये पुलिस व्हीकल को टारगेट करके किया गया था, लेकिन इसके अंदर दूसरे लोग भी जो हैं उनको शिफ्ट तो किया गया है वहां पे हॉस्पिटल के अंदर, और हेल्थ इमरजेंसी जो है वो अनाउंस की गई है कराची के हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। तो हमेशा की तरह जो है हमारी एजेंसियां सो रही थी और ये धमाका जब हुआ तो उसके बाद जी फिर वो एक बयान आया कि करार वाकई आपको सजा दी जाएगी जिन्होंने भी ये किया है। तो भाई कब तक, और जैसे लीफ पीछे 20 साल से सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे,
अब के मारियो
तो अब भी यही सोच रहे हो कि भाई अब के मारो, अब हम आपको पकड़ लेंगे। भाई साहब किधर आप सो रहे होते हैं, क्या आपकी इंटेलिजेंस है और किधर इंटेलिजेंस एजेंसियां आपकी। पीएमएलएन के जो लीडर हैं अताउल्ला तारड़, उन्होंने कहा है जी कि पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर जो हैं उस्मान बुज़दार, उनके ऊपर करप्शन के केसेस चलाए जाएंगे। हमने जो केस है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको दिया है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान नियाजी जो हैं उनके लिए एज अ फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है, और इनके जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे इमरान खान साहब के, वो ये सारी चीजें चलाते थे, और बुज़दार साहब जो हैं उनको इस चीज का जो है अब आंसर देना पड़ेगा। ये जो कौमी वेल्थ है इसका जो ये प्लंडर कर रहे थे, इसके लिए ये जो है अब कौम को बताएं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इमरान खान नियाजी समझता है कि सिर्फ वो नेक और पारसा है, बाकी सारे झूठे हैं और ये सिर्फ ऑनेस्ट है, तो इसलिए अब इसकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये जो करप्शन की है क्यों की है। सियालकोट के अंदर जनाब बहुत बड़ा जलसा रहा इमरान खान साहब का वीकेंड के ऊपर, और वहां पे जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो जलसे से होकर जब एयरपोर्ट पे पहुंचे जनाब तो उनके दो फोन थे, मोबाइल फोन थे, वो गायब हो गए। अब वो दो मोबाइल फोन मिल नहीं रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जो पीटीआई के लीडर हैं शहबाज गिल, उन्होंने अब इसने बताया, उन्होंने कहा जी असल में जब वो जलसे पे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक वीडियो का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि ये मेरे खिलाफ साजिश है और मैंने एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें जो जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उन सबके नाम मैंने उसमें बता दिए हैं, और अगर मैं मर गया, अगर इन लोगों ने मुझे मार दिया तो जिन लोगों को मैंने वो वीडियो दी है वो ऑल इमीडिएटली सामने आ जाएगी, और वो सारे जो गद्दार हैं जिन्होंने मेरी गवर्नमेंट को हटाया है और इस मुल्क के साथ गद्दारी की है उन सबके नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो वो शहबाज गिल का कहना है कि अगर तो आपने फोन इसलिए गायब किए हैं कि वो दोनों वीडियोस के फोनों पे थे तो जनाब वो दोनों वीडियोस के फोनों पे नहीं थे, तो इसलिए यानी कि जिसने भी वो चोरी की है फोन वो
वापस कर दो,
वापस कर दो। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो देखना चाहते होंगे कि इसकी क्या टॉक हो रही है लोगों
के। मगर ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा आदमी है, उसके फोन जो है उसके पास तो कई उसके अपने लोग उसके अड़ोस पड़ोस में होते हैं।
हाँ, तो मजे भाई वही होते हैं ना, जो अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे कभी लोग होते हैं वही मरवाते हैं ना। इंदिरा गांधी को उनके अपने ही जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने ही मारा था ना, सलमान तासीर को उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड ने मारा था ना, तो वही होता है ना, आसपास के भी कुछ लोग होते हैं अलेजली। मैं कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही कि जरूर ऐसा ही हुआ होगा इस केस में, लेकिन कुछ तो गफलत कहीं ना कहीं तो हुई है ना भाई,
जरूर।
तो
जरूर।
जिसकी वजह से वो फोन उसके गायब हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है, अच्छा अब ये जब बात सामने आई तो ये जब सियालकोट के इन्होंने जलसे में कहा कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है और मैंने सारे साथियों के नाम बताया, तो आज एक जो मीटिंग की है शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी दी जाए, और इन्होंने कहा है जी डायरेक्टिव्स दिए हैं इन्होंने सारों को ही, जो मिनिस्ट्री इंटीरियर मिनिस्ट्री है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और उन्होंने कहा जी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है यानी कि जहां पे भी ये जा रहे हैं, अगर पिशावर जा रहे हैं तो केपी की गवर्नमेंट, पंजाब में जा रहे हैं तो पंजाब गवर्नमेंट, उनको जो है इनको हिफाजत देने की जरूरत है। और उन्होंने कहा है जी कि ये जो है जो भी जो खतरे इन्होंने जाहिर किए इमरान खान साहब ने तो उनका हमको ख्याल है, और इसलिए हम मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं कि उनको अब जो भी वो सिक्योरिटी मांगते हैं उनको दी जाए। एक चीज जिसने दो दिन से बहुत ज्यादा हंगामा, बल्कि चार दिन से बहुत ज्यादा हंगामा मचाया हुआ है, जो हम ये कवर नहीं करना चाहते थे, बट नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन फ्रंट। अमेरिकन मुस्लिम्स थे मजद भाई कुछ दिन पहले, वो गए हैं इसराइल, उनको वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन है शराका, शराका मीन्स पार्टनरशिप, एक ये है, ये इन्होंने इनको, ये प्रो इसराइल सिविल ग्रुप है, उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया था, ये एस्टैब्लिश किया गया था 2020 में जब ट्रंप साहब ने अब्राहम अकॉर्ड्स जो था वो अनाउंस किया था कि सारे मुस्लिम कंट्रीज इसराइल के साथ दोस्ती बनाएं, जैसे कि यूएई और बहरेन ने फिर इस बात को मानते हुए इनके साथ दोस्ती बना ली थी। तो ये मुस्लिम डेलीगेशन जो है अमेरिकन मुस्लिम्स का, ये वहां पे इसराइल गया। अच्छा, अब इसमें बात जो आंखें लोगों की खोल रही है वो ये है कि इनके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, और उन्होंने इसराइल को कहा है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ इसराइल की दोस्ती होए, और इसके अंदर जो इसको लीड कर रही हैं वो पाकिस्तानी अमेरिकन लॉबीस्ट हैं, उनका नाम है अनीला अली, और इसके अलावा एक टीवी चैनल के जो एम्प्लॉई हैं अहमद कुरैशी, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली बेतहाशा बैकलैश आ रहा है कि पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है इसराइल के साथ दोस्ती के लिए, तो ये लोग फिर पाकिस्तान की कैसे ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं। तो इसके ऊपर जिस वक्त खासतौर पे ये अहमद कुरैशी का नाम आया ना, तो ये डॉक्टर शीरी मजारी, जो कि आपको पता ही है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में ह्यूमन राइट्स थी, मिनिस्टर थी, उन्होंने बहुत एतराज किया, उन्होंने कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करने के लिए, क्योंकि हम इसराइल के साथ जब तक वो पैलेस्टीनियंस पे जुल्म करेंगे हम दोस्ती नहीं बना सकते हैं। इसके ऊपर जो अहमद कुरैशी हैं उन्होंने भी बहुत एतराज किया है शीरी मजारी के ऊपर, उन्होंने कहा मैडम शीरी मजारी 2005 में आप जो थे डीजी थे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइंसेज स्टडीज के इस्लामाबाद में, और आपका जो बॉस था वो कसूरी साहब जो कि उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने क्वाइटली जाके टर्की में इजरायली ऑफिशियल्स के साथ जाके मुलाकातें की थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाहता है इजरायल के साथ दोस्ती, और आपने अपने बॉस के ऊपर जो है कोई एतराज नहीं किया था, आप चुप करके बल्कि बैठी रही, बल्कि 2008 तक आप अपनी जॉब करती रही। तो उस वक्त आपने कसूरी साहब के ऊपर जो है आप एक सेल्फ स्टाइल्ड बड़ी वो बनी हुई है एंटी इजरायल एडवोकेट बनी हुई है, तो आपने अपनी कुर्सी के लिए उस वक्त इनके ऊपर जो है वो एतराज क्यों नहीं किया? वो असल में कसूरी साहब की जो ये क्वाइटली मीटिंग हुई थी वो ये थी कि इसलिए हुई थी कि इजरायल ने बहुत सारे ट्रेड लाइसेंसेस जो थे उनके ऊपर पाकिस्तानियों के कुछ के ऊपर बैन लगा दिया था, एंड वाइस वर्सा पाकिस्तान ने भी लगाया हुआ था, और इनको ट्रेड के लिए कुछ रूट्स ओपन चाहिए थे। तो उसके लिए इन्होंने कहा था, जब जाके उनसे बात की थी टर्की में जब मिले थे, तो बहुत सारे फिर ये जो लाइसेंसेस थे ये उठा लिए गए थे, यानी कि जो प्रोसेस था सर्टिफिकेशन एंड ऑल दैट, और जो बैन्स थे ये सारे बैन्स उठा लिए थे,
इजी फॉर देम,
मेड देम इजियर टू डू बिजनेस, ठीक है, यानी कि दूसरे रूट से, यानी कि अगर कोई कंपनी जो है वो एथीस्ट अपने आप को लिख के यूएई से होके आ रही है, तो वो कहते थे कि जी ये तो यूएई रजिस्टर्ड कंपनी है, तो ये नथिंग टू डू विद इजराइल, थिंग्स लाइक दैट, यू नो, जैसे कि होता है, हमेशा से होता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में कितनी भी लड़ाई रहे, थ्रू दुबई जो है ट्रेड चलती रहती है, लाहौर में आप जाएं सारी आपको वहां पे अनारकली बाजार में बहुत कुछ आपको इंडियन स्टफ मिलेगा, एंड फॉर दैट रीजन एंड दैट फॉर दैट मैटर दूसरे भी पाकिस्तानी सिटीज में आपको चीजें इंडियन सारी मिलेंगी, तो ये ट्रेड चलती रहती है, तो ये उसके ऊपर, तो ये उन्होंने कहा जी कि शीरी मजारी साहिबा को अब क्यों तकलीफ हो रही है, तो उस वक्त क्यों नहीं हुई थी, इसलिए कि ये सारे उन्होंने कहा जी कि ये अपनी कुर्सियों के पीछे होते हैं, और अपने बॉस के खिलाफ तो बोला नहीं और मेरे खिलाफ जो है ये बोल रही हैं, तो उससे अब चीजें थोड़ी पाकिस्तान में हीटेड हो गई हैं, है जी, तो पाकिस्तान विच भी नवा कट्टा खुल गया, इस दफा पाकिस्तान विच खुल गया है जी, हुण देखो की होंदा है, फिर हुण काफी जो है 12 लोगों ने इनको कंडेम किया। आईएसपीआर की जनाब, अगेन आईएसपीआर की भी आज फिर से एक आई है कि जी एक जो है वो मीरन शाह के इलाके में नॉर्थ वजीरिस्तान में आज एक अटैक हुआ है, उसमें 3 फौजी मर गए हैं, इसमें अफसोस की बात यह है कि वो जब अटैक किया टेररिस्टों ने तो उसमें 3 बच्चे जो थे उनकी भी डेथ हो गई, इसमें था लैंस हवालदार जुबेर कदीर पाक पतन से था, 33 की एज थी, सिपाही जो था उजेर असफर फ्रॉम हरिपुर 21 ईयर्स ओनली, सिपाही कासिम मकसूद फ्रॉम मुल्तान 22 ईयर्स, और जो बच्चे 3 मारे गए हैं अहमद हसन 11 ईयर्स, अहसन 8 ईयर्स और अनम 4 ईयर्स। तो अगेन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा जी करार वाकई सजा देंगे जो हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा, ते पायन और कितना मैली आंख से देखें आपको, ये तो अब रोज का ही तमाशा बन गया, हमारे लोगों को वो आते हैं मारते हैं और आपकी एक जो है ये इंतहाई यूजलेस सी एक प्रेस रिलीज आ जाती है, तो भाई साहब या तो कोई बंदे सही वाले हायर करो या ये स्टेटमेंट्स देनी जो है ये बंद करो।
यंग लड़के,
हाँ यंग बच्चे, यंग 21 22 साल के, माजिद भाई आप सोचे जरा के जो हैं बेचारे उधर आपके मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं और आपके पास कोई सिस्टम्स ही इन प्लेस नहीं है इन बच्चों बेचारों को जो अपनी जान हथेली पे लेके बैठे हैं, क्योंकि जर्नैल तो बैठे हुए हैं ना जी ठंडे कमरों में, आगे तो बेचारे ये सिपाही मार रहे हैं ना, गरीबों के बच्चे मार रहे हैं, तो उनको क्या पता है कि किसी माँ का दर्द क्या हो सकता है जब उसका जवान बच्चा 21 साल का मर जाए, तो वट इज 21 ईयर्स माजिद भाई, वट इज 21 और 22 ईयर्स एज क्या है एज, इवन फॉर दैट मैटर जो 33 ईयर्स का लड़का है वट इज 33 ईयर्स
एक्जैक्टली,
तो
बस ये एक प्राइम टाइम,
प्राइम टाइम, हाँ तो ये वो आ जाता है जी, हम जिसने कौम को मैली नजर से देखा हम उसको ये कर देंगे। आईएसपीआर की ना वो एक इंतहाई, अब मैं वर्ड नहीं वो यूज करना चाहती, वह शोधी सी, शोधी का मतलब इंतहाई यूजलेस, एक वो आ जाती है जो है वो स्टेटमेंट कि हम करार वाके ही सजा देंगे, पायन कदों देंगे, असी तो इंतजार भी जी बैठे हुए हैं, है जी, तो बस ये यार लोगों के बच्चे इसमें मार रहे हैं। अच्छा जनाब, शहनाज गिल जो हैं आपको पता ही है काफी वो खबरों में रही हैं, कंटेस्टेंट थी बिग बॉस की उसमें 13 में, तो अब एक लीक हुई है वीडियो, अभी तक पता नहीं चल रहा था कि ये जो सल्लू भाई की एक जो फिल्म आ रही है अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली जो कि ईद पे आएगी, तो उसके अंदर स्टार जो फीमेल है वो कौन सी है, तो अब ये लीक जो ये उसमें पता चला है और वो देखा जा रहा है कि ये अपनी एक वैन से निकल रही हैं और इन्होंने घाघरा चोली जो है वो साउथ इंडियन स्टाइल का पहना हुआ है और बालों में गजरा लगाया हुआ है, तो अब जो है पता चल गया है लोगों को कि सल्लू भाई की नेक्स्ट हीरोइन जो है बिग बॉस की 13 की जो कंटेस्टेंट थी शहनाज गिल वो होएगी, तो जाहिर है ये बहुत बड़ा ब्रेक है जो इसको मिल रहा है लड़की को, तो अब देखेंगे क्या होगा। अच्छा जी,
मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इंडिया में रिलीज करने देंगे नहीं देंगे,
क्या चीज
ये फिल्म
कभी ईद कभी दिवाली
नहीं नहीं जो ये जो जिसमें ये गिल
शहनाज गिल, ये इंडियन ही है लड़की।
अच्छा इंडियन
है। हाँ हाँ इंडियन ही है, शी इज एन इंडियन। हाँ जी हाँ जी, ये जो पीछे कुछ दिनों पहले एक एक्टर मर गया था उसके साथ इसका यंग लड़का है वो था वो, तो उसके साथ इसका बड़ा मोहब्बत थी और ये बड़ी डिप्रेस रही और बड़ी ये वहां पे इंडिया में खबरों में रही है।
अच्छा,
और हाँ जी हाँ जी, तो ये हाँ जी हाँ जी, ये होगी, ये शी इज एन इंडियन राइट। ऐसे बिग बी जो है वो भी बेचारे आज भड़क गए। आपको पता ही है कि बिग बी की आदत है सुबह उठते ही वो अपने फेसबुक के ऊपर लोगों को कहते हैं, अपने सारे कहते हैं मित्रों गुड मॉर्निंग, ठीक है जी, हर वक्त वो कहते हैं मित्रों गुड मॉर्निंग है जी, नहीं मित्रों नहीं कहते वो, मैंने कहा बराबर, ये हर किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं एवरी मॉर्निंग। अच्छा क्या हुआ आज, क्या हुआ आज, इन्होंने गुड मॉर्निंग 11:30 पे कहा। जब 11:30 पे कहा तो कुछ बदतमीज लोग जो हैं वो सामने आ गए, उन्होंने कहा कि भाईजान बहुत देर
हो गई है, तो बहुत हो गई है।
हाँ, ये 11:30 जो है ये इसको आप बोल रहे हो, सो इट्स वेरी लेट, ठीक है जी। तो उस पे बिग बी ने एक्सप्लेनेशन दी कि मैं कल रात बहुत देर तक काम कर रहा था, तो वो शूटिंग जो है दिस मॉर्निंग, द शूटिंग वाज रैप्ड दिस मॉर्निंग, तो मैं जरा थोड़ा सोचता रह गया, तो मैं जब उठा तो मैंने सोचा कि आपको ग्रीट करना चाहिए, लेकिन और भड़क गए जब एक दूसरे ने कहा अभे बुड्ढे दोपहर हो गई।
ओहो दैट्स बैड।
तो जब ये कहा तो अमिताभ बच्चन साहब ने उसको आगे से कहा कि जी मैं आपकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ करता हूं और मैं सोचता हूं कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो शायद आपको उस उम्र में कोई बुढ़ा ना कहे। तो ऐसे
That's bad. That's bad. He's very respectable person.
तो अब बहरहाल मजे भाई, ये तो जरूरी नहीं है कि रिस्पेक्टेबल, आप चपरासी किसी के साथ भी तो बदतमीजी तो नहीं आपको करने का कोई राइट नहीं है।
एक नहीं, चपरासी हो कुछ भी हो, मगर जो स्टेटस अमिताभ बच्चन का है ना,
जाहिर है,
तो उस उनको
ऐसे ही तो नहीं उसको बिग बी कहते हैं ना।
एग्जैक्टली,
ही इज कॉल्ड बिग बी,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए,
तो ऐसे बदतमीजी नहीं। हाँ जी, अच्छा जी, अवर बाजी इज बैक, मैं बहुत मिस कर रही थी, मैंने कहा बहुत दिनों से बाजी बड़ी खामोश बैठी है, वेयर इज अवर बाजी, ना कोई दीदी की खबर है ना बाजी की खबर है, तो बाजी की आज खबर आ गई, कल शायद दीदी की खबर हम आपको देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, कंगना रनावत साहब से आज एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, इनकी फिल्म आ रही है ना दाकत, तो उस सिलसिले में आजकल इनकी कुछ इंटरव्यूज चल रहे हैं। अच्छा जी, तो इनसे उस इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आजकल जो ये साउथ की फिल्में जो है बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रही है, तो वो कैसे कर रही है। अच्छा, ये कर्टसी लहरें जो है उससे हमने ये पिक्चर लिया, सो वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू रहे हैं, उनका हमने ये एक जो है क्लिप यूज किया। अच्छा जी, उसके अंदर इन्होंने पूछा उससे, कंगना से, कि बाजी आप ये बताओ, नहीं उन्होंने नहीं बाजी का मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि आप बताएं साउथ की फिल्में इतना क्यों करी। वो कहते हैं जी वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और वो बहुत ज्यादा जो है अपने जो रूट्स हैं उनको भूलते नहीं है, उनके साथ है। तो उन्होंने कहा जी कि बॉलीवुड की फिल्में आप इतना अच्छा क्यों नहीं कर रही हैं। वो कहते हैं जी बॉलीवुड के अंदर तो सारे ये एक्टर्स के बच्चे आ गए हैं, एंड गेस व्हाट, उसने नेक्स्ट क्या कहा, उन्होंने कहा जी ये अपने बच्चों को ना जरा ज्यादा मॉड स्कॉट बनाने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, ये वहां से जब बाहर से पढ़ के आते हैं तो ये सिर्फ अंग्रेजी में बात करते हैं, इनका एक स्पेशल एक्सेंट होता है, ये सिर्फ छुरी कांटे से खाने वाले बच्चे हैं, इनका एक खास कल्चर बन जाता है, एक खास स्टाइल में ये घूमते फिरते हैं, और ये सारे के सारे क्या लगते हैं,
डोंट टेल मी,
क्या लगते हैं, उबले हुए अंडे। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, कंगना बाजी आप कैसे कमेंट देती हो, कहते हैं ये सारे जो स्टारों के बच्चे हैं ये उबले हुए अंडे लगते हैं। हाँ जी, व्हाट इज दिस। अच्छा जी, चलो ठीक है, कोई नहीं, बाजी है ना, बाजी अब कुछ भी कह सकती है। एंड जनाब, शिल्पा शेट्टी इज बैक ऑन सोशल मीडिया और आज उन्होंने अपना एक पोस्टर जो है वो जारी किया है, और उस पोस्टर के ऊपर ये जो है बड़ी सुपर ह्यूमन बीइंग बनी हुई है, यानी कि एक सुपर हीरो बनी हुई है जी। तो ये इनका फर्स्ट लुक है और ये इन्होंने कहा है कि जी वेट फॉर द रियल अवनी, अवनी इस कैरेक्टर का नाम है, क्योंकि इनकी फिल्म आ रही है निकम्मा, निकम्मा किया, नहीं नहीं, अच्छा नहीं, इसका फिल्म का गाना नहीं है, बारहवें की फिल्म निकम्मा आ रही है जनाब, तो निकम्मा के अंदर ये अवनी का रोल कर रही है, ये 17 मई को रिलीज हो रही है इनका ट्रेलर, नॉट द मूवी, ट्रेलर हो रहा है, तो उसके लिए इन्होंने कहा जी कि आप वेट करो उसके लिए, और ये देखा जा रहा है कि इन्होंने एक ब्लू सा ड्रेस पहना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो रेड उनकी बेल्ट और वो जो उनका जो जो दुपट्टा सा लटक रहा है पीछे वो जो है वो भी रेड है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा ओ आ गई वापस, और किसी ने कहा देसी जो है गैल गैडो, और किसी ने कहा ओ वंडर वुमन, और बड़े जी इनको कॉमेंट्स आए पी आर ए हैं जी। तो आप ही कोई
शी लुक्स लाइक अ वंडर वुमन
टॉल है ना बहुत शी इज वेरी टॉल एंड स्लिम एंड
She looks like a Wonder Woman. Yes. Wonder Woman, आपको पता है कि she used to be Miss Universe.
I know she's so beautiful. She's such a beautiful girl.
She is.
हाँ हाँ, true truly. ये जो बनाते रहते हैं ना इधर आजू बाजू में, ये इसको भी बना दो Miss Universe और इसको भी बना दिए. इस तरह की लड़कियों को बनाना चाहिए भाई.
Yeah, she was.
So beautiful. अच्छा जी. Sad news जो weekend के ऊपर सबसे बड़ी आई जो cricket के fans हैं.
नहीं, excuse me.
क्रिकेट के फैंस
नहीं,
ये लीफों की बात नहीं मैं कर रहा
हूं. नहीं, यू टेक इट बैक. द सैडेस्ट न्यूज जो आई है
लीफों की थी.
हाँ जी.
अच्छा चलो जी, सेकंड सैडेस्ट जो है.
हाँ, सेकंड सैडेस्ट.
हाँ, सेकंड सैडेस्ट जो है. हाँ, ठीक है. सेकंड सैडेस्ट जी, जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनके लिए सैड नहीं है, मेरे लिए भी. आई यूज्ड टू रियली लाइक दैट गाय एंड्रयू साइमंड्स. उनकी, हाँ जी, एंड्रयू साइमंड्स जो है उनकी वीकेंड के ऊपर कार एक्सीडेंट में, अकेले थे ये गाड़ी चला रहे थे, कार एक्सीडेंट में जो हो गई. माजिद भाई ओनली 46 इयर्स एज है इनकी. और ये इसलिए लोग ज्यादा सैड हो गए हैं क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जॉन वॉर्ड ने उनकी डेथ हुई, और फिर रॉड मार्श जो है उनकी भी डेथ हुई. तो अब ये तीसरा ऑस्ट्रेलियन है जिसकी के डेथ हुई है. इन्होंने 26 टेस्ट खेले थे और 198 ओडीआईज खेले थे, और इनको बड़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन इसकी गाड़ी जो है ना रोल ओवर हो गई थी. तो वो जब आई ना इमरजेंसी क्रू आया तो उसने काफी इसको बचाने की कोशिश की, बट ही डाइड. तो लोग जो है वेरी वेरी सैड कि ये बैक टू बैक, ये तीसरा ऑस्ट्रेलियन है, ये ऑलराउंडर था ये. तो बड़ा जबरदस्त खेलता था. तो वो कहते हैं कि ये तीसरा ऑस्ट्रेलियन है जिसकी डेथ हुई है. एंड जनाब जूनो अवार्ड्स भी थे. तो जूनो अवार्ड्स के अंदर जी हमारी जो पॉप क्वीन है कनेडा की, उसको बड़ा जी इन्होंने लोगों ने पसंद किया क्योंकि इनका एक एल्बम जो आया था लव सक्स, वो जो है वो बड़ा फेमस हो गया था. उसके जो सारे इनके जो थे अपने एवरिल लेविंग, तो इसने अपने सारे वो हिट्स जो हैं वो गाए, और जो कि कॉम्प्लिकेटेड, गर्लफ्रेंड, स्केटर बॉय, आई एम विद यू. तो यानी कि इतने वो वहां पे लोग इम्प्रेस हो गए कि वो जो होस्ट था ना लियू, उन्होंने भी इनका गाना थोड़ा सा गुनगुनाया, कॉम्प्लिकेटेड जो है. तो बड़ा जी ये इनको वो दिया गया है, हमारी कनेडियन जो है सुपरस्टार जो है, नेपनी से है ये, नेपनीज, ही इज फ्रॉम नेपनी. एंड जनाब लिवरपूल जो है, क्या मैच था लिवरपूल का मजिद भाई, आपने देखा नहीं? ओहो, आप लीफों को गोली मारो, लिवरपूल का देखा करो. लिवरपूल ने जी एफए कप जीत लिया है बाय बीटिंग चेल्सी 6-5, और ये बात जो थी पेनल्टी शूटआउट्स में मिल गई थी.
वेरी रेयर यू सी 6-5.
हां, एग्जैक्टली. तो ये वेम्बली स्टेडियम लंदन में चल रहा था, तो इसके अंदर जो विनिंग जो हिट थी वो लिवरपूल का जो है कॉन्स्टेंटिनोस सिमिकेस, इसने मारा था. तो एज अ रिजल्ट इन्होंने फाइनल जीता. और आज अफसोस की खबर ये आई है कि चाइना जो है, क्योंकि आपको पता ही है कि उनकी तो जीरो टॉलरेंस है कोविड के लिए, तो उन्होंने कहा जी कि हम 2023 का एशियन कप फाइनल्स नहीं करवा रहे हैं. हालांकि थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि शायद हम करवा सकेंगे, ये होने वाला था सितंबर गोंजाउ के अंदर, और जो था उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम पोस्टपोन किया था एक दफा, तो फिर उन्होंने कहा कि हम 2023 में कराएंगे, फिर अब इन्होंने कहा नहीं 2023 में भी नहीं करा सकेंगे, तो उसके लिए इन्होंने ना बोल दिया. एंड जनाब ये जो मेरे कलर देख रहे हैं ना, ये क्यों ऐसे हैं? ये खुशी के कलर हैं, और वो इसलिए हैं कि आफ्टर 2018, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कितना टाइम हो गया, 4 साल हो गए मजे, 4 साल के बाद पाकिस्तान में फिर से गोल्फ चैंपियनशिप आ रही है. कैन यू इमेजिन, CNS पाक गोल्फ चैंपियनशिप इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, एंड दिस विल बी हेल्ड इन कराची, एट कराची गोल्फ क्लब, फ्रॉम डिसम्बर 1-4. और जनाब लुक एट द प्राइस मनी, इससे पहले सिर्फ $3,00,000 दिए जाते थे, इस दफा जो है ये जो एशियन टूर का जो ये एक पड़ाव पाकिस्तान में भी होगा, प्राइज मनी इसमें होगा $5,00,000.
वाओ, दैट्स नॉट बैड.
यस, तो ऐसे है जनाब, इसलिए हम खुश हैं कि बहुत अरसे के बाद ये वापस आया. होता था पहले भी कराची के अंदर, ये होता था उसमें गोल्फ क्लब में, लेकिन आता ही नहीं था, ये कितने दिनों से आ नहीं रहा था, अब आ गया वापस.
होपफुली वहां की ग्रास को वो ग्रीन कर दें.
या
यू नो दैट दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नो, पूरा के पूरे कोर्स में जितनी भी ग्रास है उसको वेरी वेल कट एंड ग्रीन कर दे, तो क्या ही बात है फिर.
क्या ही बात है. यस यस,
क्या ही बात है.
करेंगे,
क्योंकि वो अगर लाहौर में कराएंगे तो लाहौर का तो मौसम ऐसा है ना कि लाहौर में तो फिर वो ग्रीन 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 ग्रास रहती है, मगर कराची में जरा.
कराची का जो ये जो गोल्फ क्लब है ना, है ना माजिद भाई, ये बड़ा आइकॉनिक है.
ओ,
ये बहुत आइकॉनिक है. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े میچز اور چیزیں اور وہ ہوا کرتی تھی, تو وہ چونکہ اب پھر سے ریوائیو چونکہ کر رہے ہیں نا, تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو لاہور یا کہ راول پنڈی یا کہ کہیں, دے وانٹ ٹو ہولڈ اٹ ان کراچی, ان کراچی. تو ایسے ہے, تو یہ جو آ جاتی ہے نا فریزر انسٹیٹیوٹ کی رپورٹیں, کراچی اچھا سٹی نہیں ہے, پہنا دیکھو پھر کی ہو رہے ہیں, یہ دیکھو پھر ہیں جی, یہ کرکٹ کے میچز کتنے ہوئے ہیں وہاں پہ
جی, ابھی
کراچی میں, اگر کراچی اتنا برا شہر ہے, کرکٹ کے میچز کیسے ہو رہے ہیں؟
کرکٹ ہے, یہ ہے, اسکواش کی چیمپئن شپس ہے, ٹینس کی چیمپئن شپس ہوتی ہیں وہاں پر, اسپورٹس میں دے دیا. اینڈ اب تو تھوڑے دنوں بعد ساکر کی بھی ہوا کرے گی, کیونکہ ساکر کے بھی جو کوچ ہے وہ بھی انہوں نے باہر سے ہائر کر دیا, پہلی دفعہ
کر لیا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہی جو یہ زلمی کا جو افریدی صاحب ہیں, انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں اب اس ملک میں اب میں لے کے آؤں گا. آپ کو پتا ہے یہ ڈیل بنانا چاہتا ہے مینچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ, اتنا پیسہ ہے اس کے پاس. یہ کہتا ہے کہ اگر مینچسٹر یونائیٹڈ جو ہے, جیسے کہ انہوں نے کھولا ہوا ہے قطر میں, یو اے ای, بحرین وغیرہ میں, تو وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں بھی ان کو اس کلب کو لانا چاہتے ہیں. تو آپ سوچیں ذرا, مینچسٹر یونائیٹڈ اگر پاکستان آ گیا, ان کا
کیا بات ہے,
کیا بات ہے.
پھر وہ ایک قسم سے ہوتا یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جو یگسٹرز ہیں نا,
وہ سارے اسپورٹس کی طرف جاتے ہیں,
اسپورٹس کی طرف جاتے ہیں, وہ اس کے اندر پھر وہ ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی ساکر, ابھی ساکر جو ہے کیونکہ اس کے اندر پیسہ نہیں ہے, ہے نا,
پیٹرونیج نہیں ہے نا,
صرف ایک اسپورٹس میں پیسہ ہے, وچ از کرکٹ,
ہے نا.
اس کے علاوہ ایک زمانے میں ہاکی کھیلا کرتے تھے, کیونکہ ان کو پی آئی اے میں جابس مل جاتی تھی, ان کو بڑی بڑی کمپنیز وغیرہ اسپانسر کر کے ان کو جابس ملتی تھی, تو اس میں تھے. اب دیکھ لیں پچھلے 20-25 سال سے ہاکی کا خاتمہ کر دیا انہوں نے وہاں پر. ساکر میں جو ہے وہ صرف غریب لوگوں کا کھیل ہے, یہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں کہ ساکر جو ہے وہ غریب لوگوں کا, حالانکہ ساکر ون آف دا وہ دنیا بھر کا
سب سے جو ہے ہائیسٹ نمبر ون اور سب سے زیادہ موسٹ واچڈ ہے,
ایگزیکٹلی نمبر ون ہے دنیا میں. مگر ہم لوگ, حالانکہ ہم لوگوں کو اتنا ایڈوانٹیج ہے کہ پورے سال ہم پریکٹس کر سکتے ہیں, ہے نا, اور اگر اس کی بھی ٹیمیں بنائی جائے نا, جیسے ایک کرکٹ کی ٹیمیں ہیں,
ایک جونیئر ٹیم اور ایک سینئر ٹیم,
ایگزیکٹلی,
اور ایک لیڈیز کی بھی بنائے ماجد بھائی, آف کورس یس,
آف کورس یس. تو یہ ان لوگوں کا بنانے کے بعد اگر اس طریقے سے پروموٹ کرے نا, اور اس کے اندر پھر آف کورس دیکھیں نا, اگر کوئی اگر پوری زندگی اپنا ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے ایک گیم کے لیے, تو اس کے مالی حالات بھی تو آپ کو
اچھے کرنے پڑیں گے نا,
کرنے پڑیں گے نا. تو یہ جو جتنے بڑے بڑی آرگنائزیشنز ہیں, دے آر دا ونس ہو شوڈ ٹیک انٹرسٹ.
اچھا ماجد بھائی, میں تو اس چیز میں بھی انٹرسٹڈ ہوں کہ چلو ٹھیک ہے, آپ نے لڑکوں کو پاکستان کی ٹیم کے لیے گروم کیا, لیکن ان میں سے کچھ اتنے اچھے ہو گئے کہ جیسے یہ جو کرکٹرز ہمارے کاؤنٹی کرکٹ جا کے کھیلتے ہیں, ان لڑکوں کو بول سکتے ہیں کہ بھئی تم آ کے ہمارے پاس ہمارے کلب کے ساتھ کھیل لو.
اب دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں نا,
محمد صلاح کو دیکھیں نا آپ,
ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا تھا میں کہ عرب کے کتنے کنٹریز ہیں, افریقہ کی کتنی کنٹریز ہیں, افریقن کتنی کنٹریز ہیں جو وہ جاتے ہیں, اور فرانس میں تو آپ دیکھ لیں
سارے مسلمان لڑکے ہیں, ساری فرینچ,
بہت سارے مسلمان ہیں, اور وہ
دو صرف کرسچن ہیں ماجد بھائی اس ٹیم کے اندر, باقی سب مسلم
ہیں, اور وہ کیا ہے, وہ دے آر آل امیگرینٹس,
یس امیگرینٹس ہیں, ہاں جی ہاں,
یا امیگرینٹس ہیں یا امیگرینٹس کے بچے ہیں, ہے نا.
مگر میرا مطلب یہ, ان کی تو اب نیشنلٹیز ہیں نا ماجد بھائی, تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے یہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں کہ جی سیزن سمر کا ہم جا کے ادھر کھیلیں گے اور آ جائیں گے, تو اسی طرح اگر کوئی لڑکے کا اتنا ٹیلنٹ دیکھ لیں گے نا, تو یہ کلبز یا تو ان کو ابزارب کر لیں گے, یا پھر یہ ان کو بلائیں گے کھیلنے کے لیے, رائٹ, کلب کسی کا حصہ بنا کے, تو بچوں کے پاس آلریڈی پیسے آ جائیں گے. پھر
کینیڈا کا ایک پلیئر جو ہے, اوکے, وہ پلیئر جو ہے ہی واز اے ریفیوجی, اور اس کے بعد جو ہے وہ کھیل کے اتنا اچھا بن گیا کہ وہ کینیڈا کی ٹیم سے کھیلتا ہے, کینیڈا کی ٹیم, نہ صرف کینیڈا کی ٹیم سے کھیلتا ہے, اس کو اب انہوں نے جو یورپ کی جو ٹیمز ہیں انہوں نے اس کو آفر کیا ہے,
ایسے ہی.
سو دس از, اب دوسری چیز سب سے زیادہ کیا ہے, آپ نارتھ امریکہ میں دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے یہاں پر اسپورٹس 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 اسپورٹس, ابھی ہاکی ختم ہوئی ہے, ابھی فٹ بال شروع ہو جائے گی, ان دا مین ٹائم ساکر ہے, ان کے ساروں کے پلے آفس ختم ہونے والے ہیں, کہ پھر دوبارہ سے باسکٹ بال کا سیزن شروع ہونے والا ہے, اس کے بعد پھر ہاکی کا سیزن. تو پورے سال میں کہیں بھی ایک دن کا بھی بریک نہیں ہوتا,
تو اس سے کیا کتنے فائدے ہوں گے آپ دیکھیں, اس سے بچے ایک تو ہیلدی رہیں گے, ٹیررزم سے دور جائیں گے, انہیلدی چیزوں سے, اور یہ جو ڈرگز ہیں ان سے دور جائیں گے.
میرا کہنے کا مقصد آپ کو یہی تھا,
ہیلدی ایک انوائرمنٹ چلے گا,
ہر بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہی وہ سیاستدان نہیں بن جاتا,
तो आप देखें कि ये बच्चे और फेम किसको अच्छा नहीं लगता, आप देखें
exactly.
आप देखें, आप इजिप्ट में जाएं ना माजद भाई, इजिप्ट में बड़े बड़े ये इसके मोहम्मद सलाह के बोर्ड्स उन्होंने लगाए हुए हैं और जिस वक्त इजिप्ट को जरूरत होती है वो आके अपनी टीम के लिए खेलता है।
अब ये देख लेना कि मुझे बड़ा अफसोस होता है एट द टाइम ऑफ एवरी ओलंपिक्स, जब भी वर्ल्ड ओलंपिक्स हो रहे होते हैं ना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि देखिए हमारे मुल्क में तो कितना अच्छा मौसम है वहां का। कैनेडा को देख लें, कैनेडा बेचारा तो वो
आठ महीने तो बर्फ में रहता है,
आठ महीने बर्फ में रहते हैं हम
yeah.
तो उसके और सर्दियां बर्फ, सर्दियां बर्फ, सर्दियां yeah. बर्फ। तो यहाँ पर तो अगर किसी को वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना है तो दे गो अवे फ्रॉम हियर और कहीं बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं अपनी। मगर वो कैनेडा पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर के आप पूरे साल प्रैक्टिस कर सकते हैं है ना, तो उधर से क्यों अच्छे ओलंपियंस नहीं निकलते, क्यों अच्छे एथलीट्स नहीं निकलते?
देखें आप ये स्पेशली फॉर एग्जांपल हमारे पठान जो हैं, मैंने तो खुद जाके ये देखा है वहां पे क्या करते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के ना माजद भाई, तो कहते हैं अच्छा परिंदा आएगा, परिंदे को ऐसे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो परिंदा कोई गुजर रहा है तो उसको गोली मार के ऐसे गिराते हैं। यानी आप देखें कितने अच्छे शूटर हैं, एक भी वर्ल्ड क्लास शूटर पाकिस्तान से नहीं जाता, आप सोचें जरा, एक लड़के को भी ग्रूम नहीं किया हुआ
भाई। आप इसको देख लेना, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, ट्रैक एंड फील्ड है, मैं कहता हूं कि हमारे पास इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में कि कोई इंतहा नहीं।
एग्जैक्टली,
मगर उस टैलेंट को यूज करने वाले ग्रूम करने वाले नहीं है वो लोग। दे आर सो मच इनटू पॉलिटिक्स, ये जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर सो मच इनटू दे ओन पॉलिटिक्स कि इन पे ख्याल ही नहीं करते कि भाई आज देखें आज के दिन दुनिया भर में। और उससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि लोग जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो ये टेररिज्म एंड सियासत से बहुत दूर रहेंगे,
दूर रहेंगे,
उनको दूर कर दो सियासत,
इतने थके हुए आएंगे उनको होश ही नहीं रहेगी।
अमेरिका और कनाडा में आप पूछ लें इनसे कि जो एथलीट्स हैं हमारे, जो इवन
शायद शायद जस्टिन ट्रूडो का नाम पता हो उनको शायद,
हाँ, और उनको यही नहीं पता कि वो
फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का नाम पूछो उसको, वो जोली का नाम नहीं पता होगा,
नहीं पता होगा, और उनको ये नहीं पता होगा कि सऊदी अरब किस कहां पर वाकई है ना। और वो मगर हमारे बच्चों बच्चों से पूछ ले आप, उनको वो बता देंगे कि उनका किंग कौन था, उनके किंग का किंग का बाप का कौन था और क्या था, और वो उसने हमारी कब मदद की थी, सेवन फ्लीट कब आया था और सिक्स फ्लीट का क्या हुआ था, किसके साथ किसकी जंग हुई थी,
या
दे नो एवरीथिंग अबाउट इट।
छोटे छोटे बच्चों के आप वीडियोस नहीं देखते, दे आर सो सिकनिंग और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, ओ हो हो ये इस बच्चे का देखो जी क्या बात कर रहा है और क्या कर रहा है। दैट्स नॉट द एज टू टॉक अबाउट दैट नॉनसेंस, एंड इवन पेरेंट्स शुड नॉट बी अपलोडिंग सच यू नो वीडियोस बच्चों को बता रहे हैं कि जी ओ इनको तो देखें, बच्चों को ना बच्चा रहने दें,
बच्चा रहने दें,
उनको दादा बना बनाए ना कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और टीवी शोज के ऊपर भी मैं देख रही होती हूँ छोटे छोटे बच्चे वो दादे बने हुए हैं बैठे हुए हैं और एंकर्स भी ओ माय गॉड क्या उसको कर रहे हैं, बच्चे को बच्चा रहने दो भाई, उसकी
लेट देम एंजॉय द यंगहुड,
देयर यू नो चाइल्डहुड,
यंगहुड, चाइल्डहुड, यंगहुड, एंड इसके बाद फिर क्या है कि उनको इन जगहों पे लेके आए ताकि उनका दिमाग जो है ना वो इन चीजों से और ये मुल्लाइज्म वगैरह से दूर रहे।
ये देखें इंडिया के ऊपर ना हमारे मौलवी बड़ा एतराज करते हैं, ओ जी सारी कौम नु इंडिया ने नचण गाण ते लगाया, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर दे हैव डन इट वेरी वेरी स्मार्ट थिंग टू डू, क्योंकि आप देख लें कभी आपने किसी हिंदू का नाम देखा टेररिज्म में माजिद भाई?
No.
कभी नहीं आपने देखा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा। सो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नाच रहे हैं गा रहे हैं, टेररिज्म तो नहीं कर रहे भाई, टेररिज्म तो नहीं कर रहे। तो आप भी अपने बच्चों को, चलो ठीक है आपके मजहब में नहीं है, इफ यू डोंट लाइक दिस थिंग, स्पोर्ट्स में लगाओ भाई,
स्पोर्ट्स में लगाओ, यू नो मेन चीज। अगर वहां पर स्पोर्ट्स की जब बात आती है तो एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ क्रिकेटर,
या बस वही है।
रीजन क्या है उसकी?
पैसे हैं,
पैसा एंड फेम,
फेम या
है ना, पैसा और फेम है उसमें, तो हर शख्स जो है वो, मगर एवरीबॉडी कैन बी 18 लोगों में तो शामिल नहीं हो सकता ना।
और आप देखें माजिद भाई हमारे पास कितने चैंपियनशिप्स थे, आप टेनिस ही देखो, लॉन्ग टेनिस देखो आप देखें जरा किस तरह एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई है उसके अंदर।
मुझे अफसोस होता है स्क्वाश में,
स्क्वाश में माजिद भाई, स्क्वाश में तो एक के बाद एक, एक के बाद एक तीन लड़के हमारे जो हैं चैंपियंस रहे, और जिसका के रिकॉर्ड जहांगीर खान का, तो सॉरी जहांगीर खान का तो रिकॉर्ड ही अभी तक नहीं वो तोड़ सके स्क्वाश में, यू सी। और उसके बाद जो है,
हालांकि उसको कोई सपोर्ट नहीं दी गई थी
माजिद भाई, वो गोरव ने जिन्होंने आके देखा था वो बड़े इंप्रेस हो गए थे ना जहांगीर खान से, तो वो आए थे पाकिस्तान देखने के लिए, तो दे वर सरप्राइज्ड कि इस जगह पे तू खेल के वर्ल्ड चैंपियन बना हुआ है। टूटी हुई सड़क से उसको लेके, उन गोरों को लेके जा रहे हैं बताने के लिए, अपनी तरफ से बड़ा शो मार रहे हैं कि जी ये जहांगीर खान इधर खेलता था भाई। ये तो आपके तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई नहीं है ना, बस यही है इमरान खान को उतार दो, खुद कुर्सी पकड़ लो, मुल्क को कितना लूटना है, कितने पैसे कहां से बनाने हैं, बस इस तरफ दिमाग चल रहा है। और फिर हम यहां पे बैठ के एडवांस वर्ल्ड में ये जो किंग्स हैं अरब वर्ल्ड के, उनको हम जो है बातें बनाते हैं, ओ जी क्या फायदा किंगडम्स हैं, ओ जी चाइना में क्या है जी, कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वो किसी को बोलने तो नहीं देते। वेरी गुड अगर बोलने नहीं देते, क्योंकि कौम को उन्होंने सीधे रास्तों पे तो लगाया हुआ है ना। कभी आपने देखा है कि अरब कंट्रीज में ये जो तूफान आए हुए हैं कि जी 24 घंटे रैलियां निकल रही हैं और लोग बदतमीजी कर रहे हैं या बेगिंग कर रहे हैं, आप सोचें जरा कि कितने एक अफसोस की बात है कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, मुस्लिम ये कंट्री है पाकिस्तान, बेगर्स कितने बेताश हैं। आपको पता है अरब कंट्रीज में पकड़ के ले जाते हैं अगर कोई बेगिंग कर रहा है, बैगिंग की इजाजत नहीं है वहां पे। वो कहते हैं तुम क्यों बैग कर रहे हो, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो भाई।
मगर वहां पर जो है ना बैगिंग जो करने करते हैं वो सारे फॉरेनर्स हैं। उन लोगों के लिए।
लेकिन वो भी मेनली माजिद भाई आपको बैगर्स नजर आएंगे सऊदी में, कतर में, बहरेन में, ओमान में, यूएई में, यहाँ पे आपको नहीं नजर आएंगे बैगर्स। और किसी जमाने में तो आप जब इराक और सीरिया भी जब सही दिमाग में थे तो वहां पे भी आपको नहीं, जॉर्डन में कभी नहीं, मोरक्को में नहीं नजर आते हैं बैगर्स आपको। ये सिर्फ सऊदी के अंदर जो लोग उमरा या हज करने आते हैं ना, तो ये वहां पे ये सोचते हैं कि शायद हमें छूट है यहाँ पे और लोग हमारे पे, क्योंकि हज वज उमरा करने आए हैं तो बितरस खा के हमको दे देंगे, पैसे दे देंगे। बट अदर अरब कंट्रीज बिल्कुल इजाजत नहीं है, बिल्कुल इजाजत।
मगर यहाँ पर ना ये हमारे पाकिस्तान में अगर कोई
माफिया
कर सका, ये अगर कोई कर सका ये, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का इतना नाम होगा,
बहुत नाम होगा।
लास्ट टाइम दे वांट समथिंग फ्रॉम ओलंपिक्स,
या ये इतने टैलेंटेड हैं लड़के और लड़कियां माजिद भाई। और आपको पता है कि एंड द थिंग इज दे आर रेडी टू डू थिंग्स, दे आर रेडी टू डू थिंग्स। आपको पता है अभी ये जो लड़का था, ये विकास उसका नाम है, मैं नाम ले लेती हूँ उसका, मैंने उसको बड़ी रिक्वेस्ट की है कि तुम आओ, ही सो हार्ट ब्रोकन ही डजंट वांट टू कम ऑन रेडियो, क्योंकि वो कहता है मैं रो पड़ूंगा। ही वाज टेकिंग केयर ऑफ ये जितनी इमरान खान की ये जो डिजिटल इकोनॉमी है ना, उसको जो पाकिस्तान में डेवलप कर रहे थे ये लोग, वो उसको डेवलप ये कर रहा था। और वो कह रहा था यू गाइज हैव नो आइडिया वेयर पाकिस्तान इज गोइंग इन डिजिटल इकोनॉमी नाउ। यंग लड़के और लड़कियां जो हैं वो अब काम ही सिर्फ जो है डिजिटली कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर अब डॉक्टर्स भी शामिल हो गए हैं, इसके अंदर इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, इतना वो जो है उनको इससे फायदा हो गया है। तो और वो और उसके जो ऑफिसेज हैं, आप सोचें कि उसके ऑफिसेज मिडिल ईस्ट में हैं, लेकिन बैक ऑफिस आपको पता है कहाँ है? बैक ऑफिस लाहौर और कराची में है। वहां से यंग लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं।
सारा टैलेंट है ना,
ये टैलेंट है ना माजिद भाई, ये
टैलेंट है ना ये,
तो दैट्स द थिंग।
अगर उस टैलेंट को भी आपने अगर किसी पार्टी से जुड़ा दिया और उसको फिर खत्म कर दिया उनको, दुश्मनी शुरू होगी ना, क्योंकि ये तो इस पार्टी का है, ये इस पार्टी का है, मेरी पार्टी की हुकूमत है, उस पार्टी को निकाल दो, तो आपने क्या किया?
मैंने बहुत रिक्वेस्ट की इसको वकास को, मैंने कहा प्लीज तुम आओ, मैंने अपने जो है ना कुछ वो भी कि तुम आओ, तुम बताओ पाकिस्तान में कितना काम आ रहा है, पाकिस्तान की सिर्फ बुरी खबरें आती हैं। तो उसने वो कहा नहीं, मेरा बहुत दिल टूटा हुआ है, मैं रो पड़ूंगा, मैं नहीं आ सकता हूं, और ये और वो। अगर वो आता माजिद भाई आपको, क्योंकि मेरे पास तो वो नंबर्स नहीं है ना, तो ही वुड हैव गिवन यू दोज नंबर्स के पाकिस्तान ने डिजिटल इकोनॉमी में कितने पैसे कमाए हैं पिछले चार साल में, यंग एंटरप्रेन्योर्स अब कितने हैं,
यंग सारे,
हाँ सारे यंग लड़के हैं, तो कितने लड़के और लड़कियों ने क्या क्या वहां पे जो है अपने बिजनेसेस अब खोले हैं और क्या वो चला रहे हैं, और उनकी कंपनीज के नाम उसको पता है कि उनकी कंपनीज के क्या नाम है, किन किन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो बहरहाल एनीवेज हम लाएंगे, हम एक बिजनेसमैन को लाएंगे इंशाल्लाह, तो वो आपको कुछ बताएंगे बिजनेस की बातें, क्योंकि यही समझा जा रहा है कि ओ हो जी नई गवर्नमेंट आई है, बिजनेस सारा बैठ गया, इंशाल्लाह इन अ डे और टू वी विल ऑर्गेनाइज हिज इंटरव्यू। ही इज अ ह्यूज ह्यूज ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, एंड शायद आपका दिल भी खुश होएगा उनकी बातें सुन के, क्योंकि हमें सिर्फ ब्लीक खबरें मिल रही हैं आसपास से, तो शायद आपको लगेगा कि आपके मुल्क का जो है फ्यूचर इतना भी ब्लीक नहीं है, तो आपको उनकी बातें अच्छी लगेंगी।
और वैसे लेके भी आना चाहिए इन लोगों को, जिससे कि वो
पॉजिटिविटी है ना वो क्रिएट करें,
फॉरगेट अबाउट नेगेटिविटी, फॉरगेट अबाउट ऑल द सियासती बातें और फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग।
आपको पता है उसके साथ अग्री नहीं किया जब वो बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा नहीं 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 ये तो आप बिल्कुल सही नहीं कहे, वो कहते हैं नो, एंड बिकॉज ही इज सच अ ह्यूज बिजनेसमैन, वन ऑफ द यू नो टॉप बिजनेसमैन इन पाकिस्तान, ही विल ऑल्सो गिव यू द नंबर्स के पाकिस्तान में ऐसा भी कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही मर गया हुआ है, क्या क्या कुछ चल रहा है बिजनेस में, क्या
मगर
चल रहा है।
हमारा एक चीज होती है ना कि हम लोग रिवेंज लेने वाले लोग हैं।
हाँ,
अभी क्या है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर है, इवन दो दे आर वेरी यंग पीपल, तो इन्होंने अगर एक पार्टी ये हेल्प कर दी किसी चक्कर में, तो दूसरी पार्टी जो आएगी वो समझते हैं कि ये इसी के साथ बिलोंग करते हैं, तो इसको तबाह करो पहले।
जिस मुल्क में इंडस्ट्री तबाह हो जाती है ना माजिद भाई, फिर उस मुल्क का तो कुछ रहता ही नहीं है। इंडस्ट्रियल बेस ही तो है जो आपको चलाती है, जो हम कनाडा जैसे मुल्कों में आके बोस्ट करते हैं कि भाई तुम्हारे पास अपना क्या है, अपना क्या है। पाकिस्तान को देखो, सुई धागे से लेके, आपको पता है माजिद भाई एक और चीज मैंने इस अफरीदी की आपको नहीं बताई है, एक आपको और पता है, आपको पता है
जी।
पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पहली गाड़ियां इन्होंने, कोई उसमें कोरियन चाइनीज कोई शामिल नहीं है, पाकिस्तान की इंडिजिनसली डेवलप्ड कार्स इन्होंने बनानी शुरू की हैं। आई विल ब्रिंग दैट कंप्लीट डेटा इंशाल्लाह टुमारो, एंड आई विल टेल यू कि किस किस मॉडल की वो गाड़ियां बना रहे हैं और कितनी कोई खूबसूरत वो गाड़ियां बना रहे हैं और कितनी इन्होंने मैन्युफैक्चर की हैं और किस किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब ये।
वाओ,
यस। सो मतलब है इस मुल्क में जो है ना बहुत अल्लाह ने दिया है इसको, स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना माजिद भाई, दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी
वन ऑफ दोस कंट्रीज जहां पर के दुनिया
में 24 घंटे लड़ाई चल रही
दुनिया
है,
में दुनिया में जो है वो एज फैक्टर देखें ना, तो आप वो जो ओल्ड एज है वो ज्यादा है, जो कनाडा में भी देख लें आप,
जो मगर यंगस्टर्स भी काफी आगे हैं,
मगर कनाडा पाकिस्तान में अभी अगले 20 साल तक यंगस्टर्स रहेंगे।
यस यस यस,
उनकी तादाद ज्यादा है,
ज्यादा है, तो उनका माइंड सेट ही डिफरेंट है।
एग्जैक्टली।